आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने स्पष्ट किया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार पंजीकरण करके ऐप को सक्रिय कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं।
संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार आज देश की एक एक जनता नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नया मसौदा नियम प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर वर्ष यह दिवस मनाता है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया दिव्यांगजन शब्द सम्मान व एक नए भारत की सोच का प्रदर्शन करता है।
दुनिया के अंदर अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को, जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जनों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी चर्चा की। प्रदेश के कई अन्य जिलों में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर विविध आयोजन किए गए। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के पहले चरण के दूसरे दिन तमिलनाडु से आए विद्यार्थियों के समूह ने आज हनुमान घाट पहुंचकर गंगा स्नान किया और प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन किया। एक रिपोर्ट।
विद्यार्थियों को वाराणसी के घाटों और मंदिरों के इतिहास की जानकारी दी गई। इसके बाद विद्यार्थियों के समूह ने हनुमान घाट स्थित महान तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के घर का भ्रमण किया। तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल ने पवित्र शंकराचार्य मठ का भी दौरा किया। आज ही नमो घाट पर तमिल सीखें तमिल करकलम की थीम पर छात्रों के लिए एक विशेष एकेडमिक सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को तमिल भाषा, लोक कथाओं और वहां की संस्कृति से परिचित कराया गया। वाराणसी से मनीष सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR जारी है। इसके तहत वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आज वहां के कई बूथों का औचक निरीक्षण कर फीडिंग व मैपिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर BLO को गुणवत्तापूर्ण काम करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 4 मजदूरों की कथित मौत और कई अन्य के घायल होने की घटना पर वहां के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के पकवा इनार के पास आज राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर टायर फटने से एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा रहे वाहनों से टकरा गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य गंभीर तौर से घायल हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।